कृपा रावरे की जे यहां साधन के अभिमान का त्याग है, अपने अधिकार का त्याग है। सजन शुद्ध ज्यो जानो ज्यो लीजिए, मेरा कोई अधिकार नहीं है, आप जैसे चाहें मेरी सुध लें, मेरा कोई और नहीं है। तो साधन के अभिमान का त्याग, वैसे तो वो श्री कृष्ण की नित्य प्रिया हैं, उन्होंने गोपियों की भांति परकिया भाव की बात पसंद की। परकिया भाव में विशेष त्याग है। परकिया अपने पति पर अपना कोई अधिकार नहीं मानती, और सुखिया अपने पति पर अपना अधिकार मानती है, जैसे रुक्मिणी जी। तो मालूम होता है कि मीरा जी बिल्कुल इस युग की गोपी हैं। कहती हैं मेरा कोई अधिकार नहीं है, आप जैसे चाहें मेरी सुध लें। ये आत्मीय संबंध की विलक्षणता है, मेरा कोई और नहीं। आगे दिन में मुझे भूख नहीं लगती, रात को मुझे नींद नहीं आती, इसका अर्थ क्या है? मीरा जी प्राण धर्म से ऊपर उठ गई। भूख लगना प्राणों का धर्म है, और नींद आना ये कारण शरीर का धर्म है, कारण शरीर से भी ऊपर उठ गई। अब देखिए उसके बाद तुरंत कहती हैं यह तन मन और शरीर से अलग है, बिल्कुल पल पल चीजें खींच रहा है। क्या हो रहा है, कैसे क्या खींच रहा है? ये जो गुणमयी माया से रचा हुआ जो शरीर था वो अब प्रेम तत्व से में विलीन हो रहा है, प्रेम से निर्मित हो रहा है। यानी गुणमयी माया जो थी उसका प्रभाव नाश हो रहा है, और भगवान की जो योग माया है उसका प्रवेश हो रहा है। हमको यह अर्थ समझ में आता है, यह तन पल पल चीजें। अमीरा जी गुणातीत हैं, देहातीत हैं तुरंत। उसके बाद उन्होंने तुरंत ही जो कह दिया, मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिल बिछुरन नहीं कीजिए, यानी आप मुझे मिल गए अब वियोग न हो, ये उनका अंतिम वाक्य है। और सुनते हैं कि उन्होंने किसी ने फिर उनके शरीर को नहीं देखा, भौतिक शरीर को नहीं देखा। और तानपुरा के तार में से, मंदिर की दीवार में से, श्री विग्रह में से मिल विसरण नहीं कीजिए, मिल विसरण नहीं कीजिए, मिल विसरण नहीं कीजिए, ये ध्वनि बहुत देर तक होती रही। किसी इतिहासकार ने ये नहीं कहा कि मीरा जी का अंत्येष्टि संस्कार हुआ था दुर्गापुरी में, ऐसा किसी ने नहीं कहा। उनका भौतिक शरीर भी प्रेम तत्व में विलीन होकर अपने प्रेम आश्रम से अभिन्न हो गया। तो इसमें त्याग का भी दर्शन है, अनुराग का भी दर्शन है, योग का भी दर्शन है, बोध का भी दर्शन, सभी बातें आ गई। बोध भी है, योग भी है, अनुराग भी है, त्याग भी है। ये भगवती मीरा जी का अंतिम पद है। इसको आखिरी पद बताते हैं खोज करने वाले लोग। इससे ये स्पष्ट ही है कि जो एकमात्र प्रभु को ही अपना स्वीकार करता है और ये अच्छी तरह जानता है मेरा कोई और नहीं है, और ये भली बात मानता है प्रभु मेरे, एक बात जानने की एक बात मानने की, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बात जानने की है, ये मानने की नहीं है। और प्रभु मेरे अपने हैं ये मानने की है, ये जानने की नहीं है। तो जानने से पराधीनता की, सर्व दुखों की, अशांति की निवृत्ति होती है, और मानने से अखंड स्मृति की अगाध प्रियता की प्राप्ति होती है। यह साधकों का अनुभव है, यह जीवन का सत्य है। इसलिए मनुष्य में दोनों प्रकार की शक्तियां हैं, जानने की भी है, मानने की भी है। एक जो स्थूल शक्ति है करने की, वो भगवत नाते काम करने की है, वर्तमान काम करने की है। उसको भक्त लोग उसे पूजा कहते हैं और कुछ लोग उसको कर्तव्य कहते हैं, कुछ लोग उसको धर्म कहते हैं। तो कर्तव्य का उत्तर पक्ष जो है, धर्म का जो उत्तर पक्ष है, वो योग है। क्यों? कर्तव्य पालन से मानव राग रहित होता है, विद्यमान राग की निवृत्ति हो जाती है। और क्योंकि कर्तव्य का दूसरा अंग है अपना अधिकार त्याग, उससे नवी राग की उत्पत्ति नहीं होती। तो विद्यमान राग निवृत्त हो गया, नवीन राग उत्पन्न नहीं हुआ। और राग में बाधा पड़ती है तभी क्रोध उत्पन्न होता है, तो क्रोध भी नहीं होता। तो राग और क्रोध से रहित होने से योग की प्राप्ति होती है। अब ये देखने में ऐसा लगता है कि इसका कोई क्या अजीब आदमी है, कहते हैं सर राग और क्रोध रहित होने से योग की प्राप्ति होती है। क्योंकि अधिकार छोड़ने से और अधिकार देने से मनुष्य फ्री हो जाता है। फ्री की हिंदी क्या होगी? स्वतंत्र हो जाता है, स्वाधीन हो जाता है। अधिकार देने से भी स्वाधीन हो जाता है, अधिकार छोड़ने से भी। फिर उसका संसार से कोई संबंध रहता ही नहीं, तो जिसका देना था दे दिया, लेना था छोड़ दिया, संबंध क्यों रहेगा? कहना चाहिए वो जीवन मुक्त हो जाता है। और वैसे देखा जाए वैज्ञानिक दृष्टि से तो कर्तव्य के अंत में योग की प्राप्ति हो जाती है। योग, योग माने अपने में जो अपना प्रियतम है उसके साथ मिलन, एकता, समीपता, अभिन्नता। मिलन की तीन श्रेणी है, पहली श्रेणी है समीपता, दूसरी एकता, तीसरी अभिन्नता। इसलिए पहली श्रेणी को योग कहते हैं, दूसरी को बोध कहते हैं, तीसरी को प्रेम कहते हैं। तो मानव जीवन के विकास की जो चरम सीमा है वो योग बोध और प्रेम की प्राप्ति में है, भोग मोह आसक्ति की निवृत्ति में। इसी का मूर्तिमान चित्र श्री भक्तिमती मीरा जी का जीवन है। उन्हें योग बोध प्रेम प्राप्त हो गया, वो तो अविनाशी तत्व है योग बोध प्रेम, वो तो प्रभु की ही महिमा है। योग भी प्रभु की महिमा है, बोध भी महिमा है, प्रेम भी महिमा है, क्या है? प्रभु का ही स्वभाव है। उसी से मीरा जी अभिन्न हो गई और उसी इन्हीं तीनों की एकता का नाम राधा तत्व भी है, सीता तत्व भी है, गौरी तत्व भी है। अनंत सखियां राधा तत्व से, गौरी तत्व से, सीता तत्व से विलीन होकर अनंत परमात्मा के साथ अभिन्न होती हैं। ऐसा प्रेमियों का मत है। ज्ञान की तो कर दी है बोध, बोध माने ज्ञान, योग बोध प्रेम एकता, उस परमात्मा के साथ एकता बोध, समीपता योग, अभिन्नता प्रेम। ज्ञान तो एक प्रकाश है ना, भक्ति एक रस है, योग एक सामर्थ्य है। यही सब कुछ चाहिए, सामर्थ्य भी चाहिए, ज्ञान का प्रकाश भी चाहिए, प्रेम का रस भी चाहिए। यही मनुष्य की मांग है। क्यों? ज्ञान के बिना तो कोई स्वाधीन हो ही नहीं सकता। स्वाधीन हुए बिना प्रेमी कैसे होगा, उदार कैसे होगा? कहीं पराधीन तो प्रेमी होते नहीं, पराधीन तो उदार होते नहीं। और वैसे अगर देखा जाए तो मनुष्य की जो मांग है वही भगवान के का वर्णन है, उसी तरह का। जैसे भगवान को लोग कहते हैं परम उदार हैं, परम प्रेम से परिपूर्ण हैं, रस से परिपूर्ण हैं, अविनाशी हैं, स्वतंत्र हैं, जैसे परमात्मा अविनाशी है तो मनुष्य को अविनाशी जीवन चाहिए, परमात्मा स्वाधीन है तो मनुष्य को स्वाधीनता चाहिए, परमात्मा परम उदार परम प्रेम से भरपूर है तो प्रत्येक मनुष्य को उदारता और प्रेम भी चाहिए। तो जो परमात्मा की महिमा बताई जाती है, जो परमात्मा के विशेषण बताए जाते हैं, उन्हीं की मांग मनुष्य को होती है। अब वो मांग संसार के द्वारा पूरी नहीं हो सकती, न किसी वस्तु से, न किसी योग्यता से, न किसी सामर्थ्य से। इसीलिए ये बात कही जाती है कि भाई प्रभु को अपना मानो, प्रभु को पसंद करो, प्रभु के होकर रहो। तो क्यों? तो वो मांग पूरी हो जाएगी। किसी भी सामर्थ्य के द्वारा, योग्यता के द्वारा, वस्तु के द्वारा मनुष्य स्वाधीन नहीं हो सका, अविनाशी जीवन नहीं पा सका, रसरूप जीवन नहीं पा सका। इसलिए विवश होकर ये कहना पड़ता है कि जगत से परे, देह से अतीत अविनाशी जीवन है, स्वाधीन जीवन है, रसरूप जीवन है, ये कहना पड़ता है। तो विवेकी जन उसको देहातीत जीवन कहते हैं और प्रेमी जन उसको भगवत प्राप्ति का जीवन कहते हैं। नहीं, प्रेम प्राप्त होने के बाद विश्वास हो ही रहेगा, विश्वास तो विश्वास हो जाता है कि बोध हो जाता है। प्रेम की जगने से पहले जो विश्वास, अगर जिसको अपना माना था उसमें जब प्रियता उदय होगी तो उससे दूरी भेद भिन्नता रहती है क्या? तो मानना सदैव मानना ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। मानना प्राप्त होना हो जाता है। मानव के व्यक्तित्व का जो अंतिम विकास जो हो सकता है तो तीन रूप में हो सकता है, योग के रूप में, बोध के रूप में, प्रेम के रूप में, और इसके चरम के विकास की कोई चरम सीमा ही नहीं सकती। और योग कर्तव्यपरायणता से प्राप्त होता है, असंगता से भी, आत्मीयता से भी। विश्वासियों का योग होता है आत्मीयता से, विवेकियों का होता है असंगता से, और भौतिकवादियों का होता है कर्तव्यपरायणता से। तो कर्तव्यपरायणता से भी मनुष्य राग रहे तो कर फ्री हो जाता है, असंगता से भी फ्री हो जाता है, आत्मीयता से फ्री हो जाता है। अब जैसे देखिए ना, अब व्यवहार में रहते हैं उन्हें साहब, वो लड़की शादी हो गई, क्या हो गया उसको? उसका संबंध अमुक व्यक्ति के साथ हो गया, वो उसका पति है, वो उसकी पत्नी है। लड़के की शादी हो गई तो कहीं पत्नी है, लड़के की शादी हो गई लड़की के अंदर पति है। तो पति के साथ संबंध हुआ, पहले स्वीकार किया संबंध, आत्मीय संबंध अपने हैं, तो वो योग कहलाता है। ऐसे ही परमात्मा के साथ आत्मीय संबंध, ये भी योग है। प्रभु अपने हैं, ये योग है, विश्वासियों का योग है। और तीनों संसार से अतीत, कर्म चिंतन स्थिति से अतीत में जिसका नित्य वास है वो ज्ञान के द्वारा योग है। और कर्तव्यपरायणता के बाद भी जब संसार संबंध नहीं रहा तब भी योग है। तो तीनों प्रकार से संसार के संबंध का नाश है, भगवान को मानकर चलो तो, और ज्ञान के प्रकाश को अपनाओ तो, और कर्तव्य का पालन करो तो। तात्पर्य कहने का हुआ कि संसार के संबंध का जो त्याग है इसी का नाम योग है। ऐसी कोई तीसरी चीज बीच में नहीं है कि संसार के संबंध को तोड़ करके अपने और परमात्मा के बीच में कोई और दूरी हो, फासला हो, कुछ तो नहीं है। यहां संसार के संबंध का त्याग हुआ कि परमात्मा के साथ योग हुआ, चाहे प्रियता को लेकर, चाहे बोध को लेकर, चाहे संगीतता को लेकर।
योग संबंध का एक स्वरूप हुआ
मेरे जानते हैं, संबंध से भी योग होता है ना। योग तो तीनों का फल है। लेकिन भगवत गीता के 18 अध्याय, हर अध्याय के नाम फल अमुक प्रकार, विषाद योग, उन्होंने कहा अमुक योग, वो अमुक योग, योग ही लगाया तुमने, लगाया कि नहीं? तो योग माने जो जहां सब साधनों की एकता हो जाए। तो चाहे आप कर्तव्य निष्ठा को लेकर चलें, चाहे आप असंगता को लेकर चलें, चाहे आप आत्मीयता को लेकर चलें, और चाहे तीनों को मिला के चलें, तो कर्तव्य परायणता असंगता के साथ भी है, आत्मीयता के साथ भी है, और असंगता आत्मीयता के साथ भी है, और आत्मीयता में भी असंगता है, क्योंकि किसी की असंगता से ही नहीं किसी की आत्मीयता हुई है। पहले किसी का संग्रहित तो किसी ने किसी को देखा ही नहीं, किसी ने अपने को संग्रहित नहीं देखा। तो असंग होकर भी आत्मीयता भी असंग होकर ही प्राप्त होती है, और स्वाधीनता भी असंग होकर ही प्राप्त होती है, और विश्राम भी असंगता से ही प्राप्त होता है। तो चाहे असंगता को चाहे संसार के संबंध का विच्छेद को, एक ही बात है, भाषा का भेद है, वस्तु से वास्तव में बात एक ही है। कोई कहे मैं सब संसार से असंग हो गया, कोई कहे मैंने संसार संबंध तोड़ दिया, कोई कहे मैंने भगवान संबंध जोड़ लिया, फर्क क्या हुआ? अरे भगवान से जोड़ लिया तब भी संसार संबंध नहीं रहा, और असंग हो गया तब भी संसार संबंध नहीं रहा। भैया जो कुछ देना था तो दे दिया, लेना मैंने छोड़ दिया तब भी संसार संबंध नहीं रहा। तो कर्तव्य परायणता से भी संसार के संबंध का त्याग होता है, और असंगता से भी संसार के संबंध का त्याग होता है, और आत्मीयता से भी संसार के संबंध का त्याग होता है। तो संसार के संबंध का त्याग तो तीनों प्रकार से हुआ, अतः तीनों ही प्रकार से योग की प्राप्ति हुई। और जब योग की प्राप्ति हो जाती है तो योग की पूर्णता में बोध, और बोध की पूर्णता में प्रेम, ये स्वतः सिद्ध है। नहीं, वो तो जिज्ञासु के लिए बोध मुख्य है, और भक्त के लिए प्रेम मुख्य है, और बीच का जो मध्यम श्रेणी का उसके लिए योग मुख्य है। तीनों दृष्टियों से तीनों के लिए एक एक मुख्य है, लेकिन मुख्य रहते हुए दो चीजें उसमें सम्मिलित हैं। बोध पहले होगा पीछे प्रेम होगा, योग होगा, योग पहले होगा तो पीछे बोध होगा प्रेम होगा, प्रेम पहले होगा तो योग बोध भी होगा, ऐसा। तो जीवन एक है,
बोध होना के चीज
बोध माने वास्तविकता, जो सत्य है उसकी प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति कहते हैं बोध को। जैसे अपने को शरीर मान के रखना ये बोध नहीं है ना, ये भूल है, ये प्रमाद है, ये प्रमाद की निवृत्ति का नाम बोध है। बोध माने भूल रहे कौन है,
सत्य है, सबका निर्णय हो जाना बोध,
वो नहीं विवेक है, बोध नहीं। ना, इस शब्दों के जाल में मत खेलो यार, असली में पकड़ो, ये तो शब्द जाल है, इसे फंसा तो फंसा है।
संसार का जो संबंध है वो तोड़ने के बाद में फिर मांग रही क्या जाती है?
नहीं, हाँ ठीक कहते हैं आप, एक तरह से मांग नहीं रह जाती, और इसी को मैंने बताया ना आपसे कि संसार के संबंध तोड़ने मात्र से ही योग की भी प्राप्ति होती है, बोध की भी होती है, प्रेम की भी होती है। वो एक स्वाभाविक है, जहाँ संसार का संबंध टूट जाता है वहाँ परमात्मा के साथ समीपता भी होती है, एकता भी होती है, अभिन्नता भी होती है। ये संसार का संबंध तोड़ना तो साधन रूप वाक्य है ना, सिद्धांत वाक्य तो है नहीं।
तो जाना है तो मन का है
जी,
अब थोड़ी तो जाना तो नहीं, जमन का है, जमन से टूट देना है उसकी बात मेरा नहीं है।
हाँ, इसी से आपको निर्विकारता प्राप्त होगी, चिर शांति प्राप्त होगी, जीवन मुक्ति प्राप्त होगी, भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी। ऐसा सोचिए, संसार की सहायता के बिना अगर आपको अपने जीवन का बोध हो जाए तो फिर क्या अमर हो गए? और संसार की सहायता से जब तक जीवन मालूम होता है तब तक तो मृत्यु के क्षेत्र में रहते हैं ना। तो शरीर के रहने का नाम जीवन नहीं है, शरीर बना रहे इसका अर्थ जीवन नहीं है, वो तो बदलता रहता ही है, जन्म और मृत्यु का क्रम चलता ही रहता है, इसको जीवन नहीं कहते। शरीर से संबंध टूटने के बाद जीवन की प्राप्ति होती है। अगर आप ये अनुभव कर सकें कि बिना शरीर के भी मेरा अस्तित्व है, हो गए मुक्त पुरुष, फिर क्या है? और परमात्मा का अस्तित्व भक्त हो गए, मेरा अस्तित्व तो मुक्त हो गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए तो शांत हो गए, मेरा कुछ नहीं है तो निर्विकार हो गए। तो क्या अपना मन कभी स्थिर नहीं होगा जब तक कि मन अपना है। भगवान अपना हो तो मन भगवान में विलीन हो सकता है। हम अपने मन को अपना मान करके कभी इससे नहीं कर सके, न कर सकते हैं, कोई कहते ही रहते हैं, इस बलपुर लगाते रहते हैं, अपने आप हटता रहता है, बलपुर हटाते रहते हैं, अपने आप लगता रहता है, ये द्वंद रहता है। संसार के संबंध का जो प्रभाव है सच पूछिए तो उसी का नाम मन है। मन कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है। संसार के संबंध का प्रभाव यानी संसार का जो आकर्षण होता है ना, तभी मालूम होता है वहां मन है। वो जी चाहता है कि ये मिल जाए, कि जी चाहता है ये हो जाए, कि जी चाहता है ये हो जाए, तब मन का भास होता है। अगर संसार के संबंध का प्रभाव नाश हो जाए तो मन नाश हो जाए। ऐसे ही परमात्मा के संबंध के प्रभाव का नाम ही साधना है और साधना कुछ नहीं है। परमात्मा के संबंध का जो प्रभाव आ जाता है जीवन में उसी को साधना कहते हैं।
शरीर का संसार का संबंध तोड़ना आने की वजह है, थोड़ा सा इस तरह प्यारा लगता है मेरे को, उनका सुख भोग के आकर्षण का सुख है ना, उसका प्यार।
हाँ बात क्या है, मौज करो दोनों बात है, भोग भी करो योग भी करो, बड़ी बढ़िया बात है, नाम चल जाएगा, चल जाएगा। भोग और संबंध तो एक साथ होता नहीं है।
भोग का त्याग कहा
नहीं, भोग के आकर्षण का त्याग, भोग का त्याग नहीं कहा, सुख भोग और आकर्षण का त्याग, ये कहा है
सुख भोग के आकर्षण का त्याग।
हाँ हाँ, तो भोग तो रहा है ना,
आकर्षण का त्याग
भोग और आकर्षण।
हाँ हाँ
वो एक साथ नहीं होगा ना। योग से भोग की रुचि नाश होगी, बिना योग के भोग की रुचि नाश नहीं होती, और बिना भोग की रुचि के नाश के योग नहीं होता। भोग का अर्थ क्या है, पराधीनता में भी जीवन है, रस है, सुख है, ये सुरक्षित बनी रहे, पराधीनता सुरक्षित बनी रहे, बढ़िया भूख लगती रहे, रुचिकर भोजन मिलता रहे, ये भोग हुआ। भूख भी लगती रहे, रुचिकर भोजन मिलता रहे और खाने की शक्ति भी मिली रहे। नहीं तो ऐसे भी रोग होते हैं शरीर में कि भूख लगी और खा सकते नहीं। एक रोग था महिला बेचारी को, प्यास लगती थी और पानी निकल नहीं सकते, होश था, बातचीत करते थे, क्या होता किसने से बूंद पानी चला जा सकते थे, तो डॉक्टर ने कहा हम गले में छेद करके पानी डाल सकते हैं, तो राजी नहीं हुए, गले में कैसे तकलीफ हो गई थी।
वैसे रोग बहुत जल रहे थे, थोड़ी दिन में
और दिन तो नहीं मिल रहा रहेंगे, तो वैसे उनको ठीक वैसे थी, कोई और खास तकलीफ नहीं थी, एकादशी का मृत्यु भी था उसे कुछ दिन का तकलीफ था। ये फैजाबाद की बात है, एक कार्यक्रम जज थे जलेश्वर वाले, उनकी पत्नी की बात है, राम रघुवीर जी की लड़ती देखते मिलते उनकी बात। मतलब मेरे कहने का यह है कि अभी तो हम लोग सजग हैं, सावधान हैं, इतनी सामर्थ्य है कि विश्वासपूर्वक गुरु को अपना मान लें, ज्ञानपूर्वक संसार का संबंध तोड़ दें। ये काम वर्तमान में करने का है, शीघ्र ठीक करने का है, देर करने का नहीं है। देर करने के बाद नवानी तब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, ये चेतना ही नाश हो जाए, फिर दिमागी खराब हो जाए, क्या हो जाए, क्या बदलता है, इसलिए शीघ्र शीघ्र ये अनुभव ही करना चाहिए। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु मेरे अपने हैं, सब कुछ प्रभु का है। चाहे मान के चलो प्रभु अपने हैं, सब प्रभु का है, चाहे ज्ञान के चलो मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहे चारों मिला दो।
आप विचार कीजिए, बहुत जरूरी बात है ये, और ये बात जिस वक्त देखिए हमारे पास लेके नहीं आई, तो हमने उनसे पूछा कि तुम क्या चाहती हो, तुमने बड़े सीधे सरलता से ईमानदारी से कह दिया कि इतने बड़े संसार में मुझे कोई अपना करके नहीं मालूम, एक बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात ये कही, मैंने सोचा था कि मैं पढ़ लिख जाऊंगी, स्वावलंबी हो जाऊंगी, सदाचारी बनी रहूंगी, तो मेरी मांग जो है पूरी हो जाएगी, तो बुरी मेरी नहीं हुई मांग पूरी, पढ़ लिख गई, सदाचारी बनी रही, समाज में सम्मान मिल गया, रोटी की सुविधा हो गई, फिर भी मैं इस अभाव का अनुभव करती हूँ, कोई मेरा नहीं और मुझे कोई अपना चाहिए, ये बात उन्होंने कही। और अनीश्वरवादी वो नहीं थी, लेकिन ईश्वरवादी होते हुए भी ईश्वर से विद्रोह करती थी, लड़ती थी, तुमने मुझे क्यों बनाया, मैं कहा तुमसे कहने गई थी मुझे बनाना, और जब बनाया तो मैं जो चाहती हूँ होता क्यों नहीं, इस तरह का विद्रोह रखती थी ईश्वर से। और कभी कभी तू मनोविज्ञान की पंडिता है और ये भी कहें कि मैं अस्पताल में दिन गई तो मैंने एक मरीज को इतना इतना भयंकर दुख में पड़ा देखा कि वो घोर संकट में था, तो मुझे वही क्षोभ हुआ, हे सृष्टि बेचने वाले तू कैसा करुणामय है जो तेरी सृष्टि में इतना दुख है। तो इस तरह से अनेक प्रकार से उनके जीवन पर एक ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि मैंने पढ़ लिख कर भी उसकी तृप्ति मेरी नहीं हुई, रोटी खमा खाकर भी तृप्ति नहीं हुई, समाज में स्थान पाकर भी तृप्ति नहीं हुई, अब मुझे कोई अपना चाहिए। तो मैंने बड़ी डरती डरती जवान से कहा, दबी जवान से, बहुत डर के साथ,
कोई जमल के आंडवन बगले भाई। मैंने कहा भाई कोई एक है तो है तो ऐसा, बोले ऐसा इस पर मेरा विश्वास ही नहीं होता, ये उन्होंने कहा। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो बात सत्य का विश्वास नहीं होता, बोले हाँ ठीक है, सरलता से मैंने कह दिया। तो हमने कहा देखो वो हमारे मित्र हैं और हम भी उनसे प्रार्थना करेंगे, अब तुम एक दफे ये तो कह दो कि तुम मुझे अपना विश्वास दे, मैं आपसे क्या निवेदन करूं। तो उनकी महिमा कि वही देव की जी आज यूं कहती हैं कि जब मैंने ये पसंद किया तो उन्होंने मेरे करने वाली बात भी की, अपने करने वाली बात भी की। मुझे तो आश्चर्य होता है कि आप भगवान पर बात करते हैं, निर्जीव होकर बात करते हैं। निर्जीवता नहीं चलती इस वक्त प्यारे, इसमें हृदय चलता है, जीवन चलता है। भगवान यदि है, मैं आप ही कहता हूं मेरे तो है ही है, तो अभी भी वैसा ही है जैसा कभी था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो गया है, उसकी महिमा नहीं घट गई है, वो कुछ बदल नहीं गया है, वो अभी भी वैसा ही है जैसा था। ऐसी बात नहीं है कि उसमें कुछ परिवर्तन आ गया हो, पर हम भगवान को जरा पसंद करते हैं क्या, चाहते हैं क्या? अभी मैं आपसे पूछता हूं, आप जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है तब तक आप चेंज रहते हैं क्या? आपको चेंज क्यों है? अगर चेंज है तो साफ जाहिर होता है कि आप भगवान को भी चाहते नहीं है। निचेल को मिला, मान लो भगवान न मिले, हमें विधि न मालूम हो, हमें तरीका न मालूम हो, हम न जानते हो कहाँ है कैसे हैं, लेकिन जिस जो हम चाहते हैं वो बात पूरी नहीं होती तो आदमी को चेंज रहता है क्या? आप कैसे चेंज रहते हैं भाई, कैसे चेंज रहते हैं? अरे अभी तो फिर आपका भगवान एक कल्पना है कोई आपकी अपनी, जरूर फिर बैठकर भगवान की बात कर ली, जरूर फिर नवा काम कर ली। अरे आप सोचिए किसी का लड़का खो जाए, उस माँ के हृदय को देखिए क्या दशा, क्या दशा होती है देखिए। फिर तो क्या उतनी योग्यता हमें आपने नहीं है कि आप किसी के लिए व्याकुल नहीं होते हैं क्या? होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपके जीवन से व्याकुलता निकल गई है, ये नहीं है। जिस बात को आप पसंद करते हैं वो बात पूरी नहीं होती है, तो आप व्याकुल भी होते हैं, आप क्षोभित भी होते हैं, आप पूरी पूरी कोशिश भी करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो परमात्मा सदैव सभी का है, उस परमात्मा से आप दूर कैसे हो गए, उसको आप भूल कैसे गए, कैसे भूल गए भाई? आप बिना कीजिए तो आप ये जो सोचते हैं कोई तरीका बताएगा, कोई विधि विधान बताएगा और उससे मुझे परमात्मा याद आ जाएगा, तो टेक्निक हमको मालूम है, हम तेला बनाना जानते हैं, हम बचपन में बनाए होते थे और तो वो बना सकते हैं और 12 वर्ष अटका रहे हैं, ये बात थोड़ी कि नहीं जानते, पर वो पेशा हमने जरा ढीला कर दिया। क्यों? लोग फिर हमको पढ़ने लगते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। आप देख लो, आंख खोल कर देख लो, जिन लोगों ने ज्यादा भगवान की बात सुनाई लोगों को, उन्होंने भगवान को नहीं पकड़ा पर सुनाने वाले को कष्ट पकड़ लिया। तो जैसे कोई डूबने वाला फल पकड़ लेता तो बचाने वाले को डुबाई देता है। आप विचार करके देखो, इसीलिए जब तक आप इस बात का ठीक अनुभव नहीं करेंगे, अगर आप ये मान के चलेंगे अरे भैया हम सालों आदमी को भगवान कैसे मिल सकता है, तो आप भगवान की बात क्यों करते हैं? बोले अभी कैसे मिल सकता है, तो अभी बात क्यों करते हैं? भगवान की खेती है जो आज बोलेंगे कल उपजेगा पौधा मिलेगा? भगवान कोई ऐसा वृक्ष है क्या आज लगाएंगे 12 वर्ष में फलेगा? भगवान तो ऐसी चीज नहीं है, भगवान तो वर्तमान में मौजूद है, ज्यों का त्यों मौजूद है, जैसा सतयुग में वैसा ही त्रेता में, वैसा ही द्वापर में, वैसा ही आज, वैसे ही तुम्हारे लिए, वैसे ही हमारे लिए, वैसे ही सबके लिए।